तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो दिव्यराजपुर कहाँ तक हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीक?
प्रभु जी हरे कृष्ण, वो वाला वर्स चल रहा था जिसमें वो यज्ञ करते हैं तो सब कुछ स्पिरिचुअल हो जाता है। 4.24
ओके,
ये भी स्पिरिचुअल हो जाता है सब कुछ, वो बता रहे थे आप।
ओके 24 और शायद 25वां भी पढ़ा होगा, पढ़ा था शायद। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ पर्व रूप अग्नि में।
हाँ 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 ये वाला भी 25वां दो एक्सप्लेन।
ओके 26 से स्टार्ट करना है, 26 नंबर से। 26 27 28 ये तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और कठिन भी हैं। कठिन इन द सेंस थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग से समझना होगा। 26वां श्लोक बताता है कि इस प्रकार से अलग अलग आश्रम में जो लोग रहते हैं, जो साधक रहते हैं, वो किस तरह से लाइन गृहस्थ के लिए है। तो दोनों आश्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। पहली लाइन बताता है, श्रोत्रादीन इंद्रियान्यन्य संयमाग्नि सुजुहुयति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्नि सुजुहुयति। इसका मीनिंग होता है श्रोत्रादि मतलब जिन इंद्रियों से हम सुनते हैं, मतलब कान, संयमाग्नि सुजुहयति, दैट मीन्स जो ब्रह्मचारी हैं उनको भौतिक संसार के बारे में श्रवण करके मन को नियंत्रित करता है करना चाहिए। देखिए अनुवाद किस प्रकार से लिखा है, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दोनों आश्रम का डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि ब्रह्मचारी जब आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में रह के श्रवण के द्वारा सुनते हैं कि इंद्रियों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, ये भौतिक संसार का स्वरूप क्या है, कैसे इस भौतिक संसार में सुखी पूर्वक रहना है और कैसे आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करनी है, तो ब्रह्मचारी इसके लिए ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो शास्त्रों से अपने गुरु के माध्यम से सुन के मन को नियंत्रित करें और इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करें। ये एक एलेगोरिकल वर्ड है, स्वाहा करना मतलब इंद्रियों की हो सकता है इच्छाएं हो, बहुत सारे करने का शक्ति हो या इच्छाएं हो, परंतु इंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रित करना है। दैट मीन्स ब्रह्मचारी आश्रम में क्रियाएं करने पे फोकस नहीं किया जाता है, श्रवण करके समझने के ऊपर फोकस किया जाता है। और हम जानते भी हैं कि कई बार हम देख के सुनते हैं, उसके बाद फिर हम सुनते हैं, सुन के सबसे पहले सुन के समझ जाते हैं, उसके बाद देख के समझ जाते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस करके समझते हैं। तो जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए कर्तव्य दिया गया है कि वो आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुन के इंद्रियों को मन के नियंत्रण में रखें, या अनियमित सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रियों के द्वारा नहीं करें, केवल सुन के वो इस चीज को रियलाइज करें। और गृहस्थाश्रम में जो है इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। गृहस्थाश्रम में व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को उपयोग कर सकता है परंतु संयमित रूप से और शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार। ब्रह्मचारी आश्रम में केवल सुन के एक्सपीरियंस करना है, उसके आधार पर एक्ट करना है। गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा हमें इंद्रियों के उपयोग, इंद्रियों के भोग या इंद्रियों के उपयोग करने की छूट दी जाती है, पर वो छूट भी शास्त्र के आधार पर होती है। उस प्रकार से जो कार्य करते हैं वो भी धीरे धीरे इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। गृहस्थ के लिए क्या लिखा हुआ है, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। दैट मीन्स इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को मिलाते हैं एक दूसरे से, परंतु शास्त्र के निर्देश के आधार पर। जैसे गृहस्थ आश्रम में दान देने का स्वभाव है, जो शास्त्रीय विधि है, दान देने से गृहस्थ जो है वो इस अनुभव को आता है कि वो जो भी धन कमाता है भगवान के लिए है, और वो धन का मालिक नहीं है, भगवान धन के मालिक है। तो इस प्रकार से उसकी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। इसी तरह से गृहस्थ पति और पत्नी के बीच में जो शारीरिक संबंध बनते हैं वो भी केवल कृष्ण भक्त पुत्र की प्राप्ति के लिए बनते हैं, तो उसका जो काम भावना है वो भी नियंत्रित हो जाती है। और ब्रह्मचारी आश्रम में ये नियंत्रण केवल शास्त्रों से सुन के किया जाता है, गुरु से सुन के और शास्त्रों से सुन के ब्रह्मचारी करते हैं, ब्रह्मचारी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। एक्सपीरियंस करके शास्त्र के आधार पे उसको भोग करके जो सीखते हैं वो गृहस्थ आश्रम में होते हैं। इसका तात्पर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। सभी आश्रमों का उद्देश्य है कि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में सफल हो सके। जैसे कि कई बार हम समझते हैं कि गृहस्थ आश्रम जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड एंजॉयमेंट के लिए है, शास्त्रों में ऐसा कभी नहीं दिया गया। जिस प्रकार से ब्रह्मचारी आश्रम जीवन की सफलता के लिए है, उसी तरह से गृहस्थ आश्रम भी जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए है। और ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ आश्रम दोनों का उद्देश्य होता है कि एट द एंड ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल की उम्र होने के बाद तक हम वैराग्य को प्राप्त करके वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाए। गृहस्थों को भी इस प्रकार से अनुमति नहीं होती है कि वो पूरा जीवन घर में रहें और गृहस्थी के कार्य करते रहें। जब उनके बच्चे बड़े होके अपनी फैमिली में लग जाते हैं, उसके बाद गृहस्थों को वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना होता है, क्योंकि ये सभी आश्रम इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं कि इनमें से व्यक्ति जाता है तो आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण हो जाता है। कलयुग के प्रभाव के कारण ये सारे आश्रम छत विक्षत हो चुके हैं। इन आश्रमों के बारे में लोगों को पता भी नहीं है और उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है इस प्रकार से। और श्रील प्रभुपाद चाहते थे इन चारों आश्रमों को और चारों वर्णों को फिर से स्थापित करना, क्योंकि ये समाज का आध्यात्मिक और सामाजिक वर्गीकरण बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी बताते थे जब तक ये नहीं होगा तब तक मनुष्य समाज आध्यात्मिकता में बहुत स्ट्रांग प्रगति नहीं करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के गोल में भी इस प्रकार से लिखा है कि हमें वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था वैदिक समय में उपलब्ध थी उस व्यवस्था को फिर से प्राप्त करना है, फिर से पुनर्जीवित करना है। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। तो ब्रह्मचारी के लिए इंद्रिय तृप्ति अलाउड नहीं है, उसको इंद्रियों के बारे में सुन के मन को वश में करना है। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरि नाम हरे नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। तो ब्रह्मचारी जब लगातार भगवान के यश कीर्तन में, भगवान के नाम कीर्तन में लगता है, तो उस नाम कीर्तन के द्वारा वो मन को नियंत्रित करता है, उसको इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय भोग में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्मचारी सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, इसमें लिखा है देखिए, गृहस्थ को इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, तो अनलिमिटेड जो इंद्रिय भोग करते हैं वो गृहस्थ आश्रम में भी नहीं माने जाते हैं, उनको गृहमेद ही बोला जाता है, वो कोई आश्रम नहीं है। गृहमेद ही जो है वो पाप पूर्ण जीवन है। सामान्यतः संसार के जो लोग हैं वो गृहमेदी जीवन में ही जीते हैं। प्रभुपाद जी उन गृहमेदी को गृहस्थ जीवन में लाना चाहते थे, जहाँ पे शास्त्रों के आधार पर इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति की जाए। गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। तो ब्रह्मचारी तो बहुत दूर की बात है, संयमित गृहस्थ भी कभी भी यौन जीवन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को अनकंट्रोल्ड तरीके से नहीं करता है, शास्त्रों के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, इस प्रकार से शास्त्रों में बताया। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में विवाह का प्रचलन है। धार्मिक रूप से विवाह जब होता है भगवान को केंद्र बिंदु में रख के, तो व्यक्ति की जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है उस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को वो भगवान की सेवा के लिए त्याग देता है, इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में आहुति लगाता है। तो ये संयमित गृहस्थ जीवन है, इसलिए मानव समाज में विवाह बहुत आवश्यक है। सामान्यतः पाश्चात्य देशों में इस प्रकार से प्रमोट किया जाता है कि विवाह की जरूरत नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप, परंतु लिव इन रिलेशनशिप जो है वो अवैधिक है, इसलिए वो पाप का घर है। हाल ही में कुछ साल पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी लिव इन रिलेशनशिप को अप्रूव किया, तो हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज ने एक लेक्चर दिया था उस समय, सुप्रीम कोर्ट इज रूलिंग अगेंस्ट गॉड, भगवान ने जो नियम बनाया है उस नियम के अपोजिट में सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया है, जो वस्तु पापमय है उसको अप्रूव किया है। तो व्यक्ति अगर धर्म विवाह के द्वारा रहता है तो धर्म विवाह में जब वो इंद्रिय तृप्ति करता है उसके साथ साथ वो जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है फैमिली मेंटेनेंस की, और उस जिम्मेदारी को स्वीकार करके वो प्योरीफाई होता है। इसलिए हर सभ्य समाज में मैरिज का प्रचलन है, और ये मैरिज बहुत आवश्यक है। जो भी व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं है उनके लिए मैरिज बहुत आवश्यक है। कभी भी वैदिक शास्त्रों में इस तरह से नहीं बताया गया कि आप शादी भी मत करिए और ब्रह्मचारी आश्रम में भी मत रहिए। जो इस प्रकार से करते हैं वो एक्चुअली अवैधिक है, पाप पूर्ण जीवन है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो अधर्म में चले जाएंगे। तो भारतीय वैदिक समाज में कभी भी कोई ब्रह्मस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं था, ये ब्रह्मचारी प्लस गृहस्थ ऐसा कोई आश्रम मेंशन नहीं है शास्त्रों में। तो या तो आपको ब्रह्मचारी आश्रम में जाना है या आपको संयमित गृहस्थ जीवन में अपनाना है और लास्ट में फिर वानप्रस्थ जीवन प्राप्त करके वैराग्य को प्राप्त करना है। इस प्रकार से ये दो प्रकार के यज्ञ हैं, एक ब्रह्मचारी के लिए एक गृहस्थ के लिए। ब्रह्मचारी को सुन के सीखना है, गृहस्थ को संयमित रूप से शास्त्र आधार पर भोग करके सीखना है, वैराग्य के बारे में सीखना है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है, किस प्रकार से जो ये यज्ञ करते हैं दोनों यज्ञ वो लोग किस प्रकार से इनको संपूर्ण करते हैं। सर्वानिन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। ज्ञान यज्ञ के बारे में बताया जा रहा है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। इसमें दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कि इंद्रिय और प्राण वायु दोनों कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। ये एक अष्टांग योग का पद्धति के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि प्राण वायु को नियमित करके और इंद्रियों को भी नियमित करके संयमित करके कंट्रोल मन के द्वारा उसको पाप के जीवन से बाहर निकलना, तो अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। इसलिए अगला जो श्लोक आता है 28-29 श्लोक वो अष्टांग योग को डिस्क्राइब करता है, 29 नंबर का श्लोक। इसका तात्पर्य थोड़ा सा कठिन है, थोड़े संस्कृत के अलग अलग शब्द बताए गए हैं, तो तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यग आत्मा तथा पराग आत्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह पराग आत्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यग आत्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार की वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। यही कार्य प्राण वायु के कार्य हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, वयान वायु वायु से संकोच और प्रसार होता है। इस प्रकार से पांचों प्रकार की 10 प्रकार की वायु के अलग अलग कार्य होते हैं शरीर के अंदर। और जो परागात्मा होता है, परागात्मा केवल भौतिक भोग भोगता है, और प्रत्यगात्मा जो है वो नियमित संयमित आत्मा कहा जाता है, जो इंद्रिय भोग से विरक्त होता है उसको प्रत्यगात्मा बोलते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र बताते हैं कि प्रत्यगात्मा बनना जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि बाकी जो इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, जीभ, त्वचा, ये सारी इंद्रियां आत्मा से बही होती हैं, बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं, और प्राणवायु जो है वो आत्मा को शरीर के अंदर संतुलित रखती है। पांचों वायु के डिस्क्रिप्शन भी है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, वयान वायु संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बनता है, उदान वायु ऊपर की ओर जाती है, और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। भगवद गीता में ही एक और पर्पोर्ट में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आत्मा जो है वो इन सभी 5 प्रकार की 10 प्रकार की जो वायु हैं इन 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 वायुओं के कारण आत्मा इस शरीर के अंदर है, और विशेष रूप से प्राण वायु जो है वो आत्मा को शरीर में रखती है। इसलिए हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो बोला जाता है कि उसके प्राण निकल गए, क्योंकि ये प्राण वायु उस शरीर को छोड़ देती है, और प्राण वायु के छोड़ते साथ आत्मा भी शरीर को छोड़ देती है, इसलिए उस व्यक्ति को बोला जाता है कि उसके प्राण चले गए। तो इन सभी वायुओं में प्राण वायु सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि मानव शरीर की क्रियाकलाप करती है और आत्मा को भी शरीर के अंदर रखती है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि मन इंद्रियों को नियंत्रित करके इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित करते हैं। प्राण वायु के कार्यों को संयमित कैसे करेंगे? प्राणायाम की क्रियाओं के द्वारा, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम होते हैं, अलग अलग अष्टांग योग की जो पद्धति होती है उससे प्राण वायु को संयमित किया जाता है। वो अगले कुछ श्लोक में आएगा, 29 नंबर श्लोक में आता है वो डिटेल में। तो टेक्स्ट 28 इसके 29 नंबर श्लोक में अष्टांग योग के बारे में बताने के पहले 28वें श्लोक में भगवान डिस्कस कर रहे हैं कि और कौन कौन से यज्ञ हो सकते हैं, और लास्ट में इस सेक्शन के लास्ट में भगवान बताएंगे सभी यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, और फिर इस अध्याय के लास्ट तक भगवान ज्ञान के यज्ञ के बारे में बताते हैं, ज्ञान के अनुशीलन के बारे में बताते हैं, उसके विभिन्न विभिन्न रिजल्ट किस प्रकार से करना है वो सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे। तो ये सेक्शन और इसका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो इस अध्याय के लास्ट सेक्शन है, उसके बाद ये अध्याय कंप्लीट हो जाता है। ज्ञान 43 श्लोक है इस अध्याय में, लगभग 42 या 43 श्लोक आते हैं। तो 28वां श्लोक इस प्रकार से है, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संस्थितव्रता। अलग अलग प्रकार के लोग यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ का मतलब है संपत्ति का यज्ञ, मतलब संपत्ति का त्याग, संपत्ति के कुछ हिस्से भगवान को समर्पित करना। उसके बाद है तप यज्ञ, शारीरिक और मानसिक तपस्याओं के द्वारा यज्ञ करना। उसके बाद है योग यज्ञ, योग यज्ञ का मतलब है अष्टांग योग के द्वारा यज्ञ करना। उसके बाद है स्वाध्याय यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन, वेद अध्ययन करना। उसके बाद ज्ञान यज्ञ, दिव्य ज्ञान की प्रगति के लिए यज्ञ करना। ये सब अलग अलग यज्ञ हैं जो कि इस संसार में कठोर व्रत वाले लोग इन यज्ञों को करते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए। इन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ जो है, जो लास्ट में बताया है, वो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है इस श्लोक का। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार के धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य स्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायन तथा चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरण के लिए, चातुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर। नेक्स्ट। ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं। तो पतंजलि पद्धति अथवा हठ योग या अष्टांग योग का अध्ययन करते हैं। तो पहली कैटेगरी के लोग हैं द्रव्य यज्ञ करने वाले, मतलब जो अपने पैसे को दूसरे की सेवा में लगाते हैं। उनका उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, स्कूल बनाते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं, अनाथ आश्रम बनाते हैं, अतिथिशाला बनाते हैं, अन्न क्षेत्र बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, ये धर्म की संस्थाएं खोलते हैं अपने पैसे के द्वारा। तो ये द्रव्य यज्ञ कहलाता है कि जो भौतिक द्रव्य है, पैसा जो है, उसको दूसरे की सेवा में लगाते हैं। उसके ऊपर होता है तपो यज्ञ, लोग अलग अलग शारीरिक तपस्याएं करते हैं। चातुर्मास का इसमें उदाहरण दिया गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योग यज्ञ करते हैं, मतलब पतंजलि योग, अष्टांग योग करते हैं। और कुछ इस तरह से लोग होते हैं, कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, वैदिक साहित्य, उपनिषद, वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। ये स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है, मतलब वेद शास्त्रों को पढ़ना, उसको स्वाध्याय यज्ञ बोला जाता है। और इसके ऊपर होता है ये स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ, ऑलमोस्ट एक तरीके से है शास्त्रों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त करना, परंतु इस इन सभी के ऊपर होता है भगवत भक्ति, कृष्ण भक्त। भगवान कृष्ण भावनामृत जो है वो प्रभुपाद जी लास्ट में लिख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है, इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो कृष्ण भावनामृत द्रव्य यज्ञ से भी ऊपर है, तप यज्ञ से भी ऊपर है, योग यज्ञ से भी ऊपर है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से भी ऊपर माना जाता है। अभी नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे अष्टांग योग या योग यज्ञ किस प्रकार से योगी लोग करते हैं। अपाने जुहवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति विद्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहवती। इसमें है अपाने जुहवती प्राणम, अन्य लोग हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। तो अपाने मतलब नीचे जाने वाली वायु, प्राण मतलब ऊपर जाने वाली वायु प्राण, और फिर प्राण अपान को रोक के समाधि में आ जाते हैं। और कुछ योगी जो है वो कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। ये थोड़ा कठिन है समझना। प्राणायाम में आप देखेंगे तो एक प्रोसेस कहलाती है पूरक, एक कहलाती है कुंभक, एक कहलाती है रेचक। तो एक प्रोसेस में हम सांस को खींचते हैं, फिर उसके बाद कुछ देर रोकते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। तो इन तीन प्रोसेस को पूरक, रेचक और कुंभक कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति समाधि में जाता है, इस प्राणायाम की ऊंची अवस्था में जाता है, तब वो धीरे धीरे सांस को लेना और छोड़ना कि फ्रिक्वेंसी को कम करता जाता है। जैसे भागवत में हमने देखा था ध्रुव महाराज जो थे वो पहले 3 दिन में सांस लेते थे, उसके बाद 6 दिन, फिर 9 दिन, फिर 12 दिन, इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने सांस रोक लिया था। तो सांस को रोकने का मतलब है निम्नगामी वायु और उच्चगामी वायु दोनों को बैलेंस कर देना। तो ऐसे व्यक्ति फिर सांस नहीं लेते हैं, उनकी आयु भी बढ़ जाती है, क्योंकि मनुष्य की सांस फिक्स है, नंबर ऑफ ब्रेथ जो है वो फिक्स है। तो ऐसे व्यक्तियों की फिर उम्र बहुत बढ़ जाती है। ध्रुव महाराज के केस में हमने देखा था जैसे ही उन्होंने सांस रोकना छोड़ा था तो पूरी धरती में हाहाकार हो गया था। तो अपान में प्राण को अभ्यास करते हैं, मतलब निम्नगामी वायु और उच्चगामी वायु को एक दूसरे में रोक देते हैं और फिर लास्ट में दोनों को बैलेंस करके पूर्ण समाधि में चले जाते हैं। ऐसी समाधि में योगी लोग सांस भी नहीं लेते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु हो गई है परंतु सांस रोक लेते हैं वो। और इसके अलावा कुछ और योगी हैं जो प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। प्राण की प्राण में आहुति देने का मतलब जिन वस्तुओं से प्राण रहता है शरीर में उन वस्तुओं की आहुति कर देते हैं। जैसे भोजन अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर में प्राण रहेगा, अगर भोजन करना बंद कर दिया तो प्राण शरीर से चला जाएगा। तो ऐसे योगी भोजन भोजन करना धीरे धीरे कम करके फिर खत्म कर देते हैं। सांस लेने से प्राण रहता है, धीरे धीरे सांस लेना भी कम करके खत्म कर देते हैं। ये जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं बहुत कठिन बात है, सामान्यतः कलयुग में इस प्रकार के योगी देखने नहीं मिलते, बहुत कम योगी हैं। हो सकता है हिमालय में कुछ इस प्रकार के योगी हों जो कि प्राण जिन जिन वस्तुओं से रहता है उन सभी वस्तुओं को आहुति लगा देते हैं। हालांकि एक अध्यात्म का प्रोसेस इसलिए भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं, परंतु कलयुग में इतना प्रैक्टिकल नहीं है ये इस प्रोसेस को करना। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी समझाया है, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती है। जैसे कोई वायु, एक्चुअली इसको प्रैक्टिकल कैसे बताएं, जैसे एक बार हमने सांस को ऊपर खींचा, उसके बाद जब सांस को हम रोकते हैं तो सांस का जो क्रम है वो बदल जाता है, क्योंकि सामान्यतः प्राण वायु ऊपर आती है, अपान वायु नीचे जाती है, परंतु जब हम दोनों को रोक देते हैं तो दोनों की दिशा विपरीत होकर न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इस प्रोसेस के द्वारा व्यक्ति अपनी उम्र को भी बढ़ा सकता है, आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ा सकता है। वही इसमें लिखा हुआ है, प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात समान नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक कहते हैं। कुंभक अभ्यास के द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। कुंभक का मतलब दोनों वायुओं को रोक देना, सांस लेना बंद कर देना। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता है। सामान्यतः योगी दीर्घजीवी इसलिए बनने का प्रयत्न करता है क्योंकि वो जिस ज्यादा समय तक साधना कर सके, परंतु कृष्ण प्रेम में जो भक्त डूबा हुआ है, कृष्ण के सेवा में जो भक्त है, उसको पता है कि मृत्यु के बाद वो भगवान कृष्ण के दिव्य पद पे जाएगा जीवन के अंत समय में, इसलिए वो कभी भी अपनी आयु को बढ़ाने का प्रयास नहीं करता है। जब तक उसका जीवन है भगवान की सेवा करता है, वो जीवन खत्म होने के बाद वो भगवान के धाम में वापस जाता है। भगवद गीता में इसको समझाया जाता है, माम च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति में लगता है निश्चल भक्ति में लगता है। व्यभिचारी का मतलब होता है, व्यभिचारी जो है वो सदाचारी का अपोजिट है। तो व्यभिचारी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, अगर पुरुष के लिए अगर देखेंगे तो व्यभिचारी मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत बहुत सारी महिलाओं के साथ, अपनी पत्नी के अलावा और अन्य महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध होता है। और अगर पत्नी के केस में अगर देखा जाए तो व्यभिचारी का मतलब होता है जिसके अपने पति के अलावा बहुत सारे पुरुषों से संबंध रहता है। तो यहाँ पे जो लिखा है अव्यभिचारी, अव्यभिचारी मतलब जिस व्यक्ति का केवल अपने एक ही व्यक्ति के साथ संपर्क होता है। दैट मीन्स भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो व्यक्ति केवल मेरी भक्ति करता है, ऐसा नहीं कि शिवरात्रि आए तो शंकर जी की पूजा चालू हो गई, फिर गणेश जी की पूजा चालू हो गई, फिर काली जी काली की पूजा चालू हो गई, कार्तिकेय की पूजा चालू हो गई, अलग अलग समय में अलग अलग सब सबको भगवान मानते हैं, सबकी पूजा करते हैं, वो भगवान यहाँ पे नहीं बोल रहे। इसीलिए लिखा है अव्यभिचारी, अव्यभिचारी भक्ति मतलब उसका आश्रय केवल एक होता है, अलग अलग सबके पास उनकी पूजा करने के लिए नहीं जाते। तो भगवान बता रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो मेरी निश्चल भक्ति करता है और भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वो सभी गुणों को लांघ कर ब्रह्म भूयाय, तीन गुणों के ऊपर ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है। और जो नेक्स्ट पार्ट बताया गया है कि कुछ योगी कम भोजन करते हैं, वो भी कृष्ण भाव नामक में नेचुरल होता है, क्योंकि कृष्ण प्रसाद को जब भक्त खाता है तो धीरे धीरे उसका भौतिक स्वाद से मन भर जाता है, फिर वो कृष्ण प्रसाद को ही स्वीकार करता है। जैसे कोई भक्त है, उसको अगर आप बहुत बड़े रेस्टोरेंट में ले जाएं, 5-स्टार रेस्टोरेंट में ले जाएं, तब भी उस भक्त को कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसका क्राइटेरिया फिक्स है कि भगवान कृष्ण के प्रसाद जो है उसी को मैं ग्रहण करूंगा। तो कृष्ण के प्रसाद को खाते खाते उसका इंद्रियों के भोग या जीव के भोग की इच्छा खत्म हो जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अत्यंत लाभप्रिय होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान यज्ञ का फल बताते हैं, जो लोग इन सभी प्रकार के यज्ञों को करते हैं उनकी किस प्रकार से प्रगति होती है। सर्वे प्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। इस प्रकार के सभी यज्ञ जो हैं, यज्ञों के अर्थ को अगर लोग जानते हैं तो पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। ऊपर जो हमने यज्ञ लिखे हैं, उन यज्ञों को जो जानते हैं, वो धीरे धीरे पाप कर्मों से मुक्त होते जाते हैं और जैसे जैसे पाप कर्मों से मुक्त होते हैं वैसे वैसे भगवान के धाम की तरफ बढ़ते जाते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में निराकार ब्रह्म के साथ या भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करता है। जो इन प्रकार के यज्ञों को करते हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को खत्म करके वो पाप के जीवन से मुक्त होते हैं और भगवान के धाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, भगवान से स्वतंत्र होकर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जो है वो पाप का मेन कारण है। उस कारण से जो बाहर आ जाता है वो भगवत धाम की तरफ, आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे बढ़ता जाता है। और इस श्लोक में, अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति कोई यज्ञ नहीं करता है उसके लिए इस संसार में कभी भी अच्छा नहीं होता है। वो ना तो इस संसार में सुखपूर्वक रह पाता है, ना अगला जन्म उसका सुखपूर्वक होता है। नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरुसत्तम, हे कुरुसत्तम, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ के बिना तो इस संसार में ही लोग ठीक से नहीं रह पाते हैं या इस संसार में ही लोग जीवन सुखी पूर्वक नहीं जी पाते हैं, तो अगले जन्म में कैसे रहें। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है तो उसका संसार में हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है। यज्ञ का केवल ये मतलब नहीं है कि हम यज्ञ की वेदी पे मंत्र पढ़ के जो घी डालते हैं वही केवल यज्ञ कहलाता है। इसीलिए भगवान ने इतने सारे यज्ञों को बताया, जब यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। अगर कोई इनमें से कोई यज्ञ को नहीं करता है तो वो इस जीवन में ही सुखी नहीं रह सकता है, तो अगले जीवन में वो क्या करेगा। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, अज्ञान पापमय जीवन का कारण है और पापमय जीवन इस संसार में अस्तित्व का कारण है। ये जानना कि हम शरीर हैं ये एक अज्ञान कहलाता है, और ये जानना कि हम आत्मा है ये ज्ञान कहलाता है। तो पाप पूर्ण जीवन का मेन कारण है अपने आप को शरीर समझना। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान भगवद गीता में अर्जुन को सबसे पहले आत्मा का ज्ञान क्यों बता रहे हैं। वास्तविकता में आत्मा का ज्ञान सबसे पहला ज्ञान है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान जिसको हो जाता है वो पापमय जीवन से बाहर आ जाता है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं होना मतलब आत्मा के बारे में अज्ञानता जो है वो ही पापमय जीवन का कारण है, और जब कोई पापमय जीवन में रहता है तो वो भौतिक संसार में फंसा रहता है। इसलिए भगवान गीता में कोई भी ज्ञान बोलने के पहले सबसे पहले भगवद गीता में आत्मा का ज्ञान सुनाते हैं, उसके बाद कर्म योग ज्ञान योग ये सब डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाए या व्यक्ति आत्मा के बारे में नहीं जाने तो उसके आगे के जो ज्ञान है वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो इसलिए पाप जीवन भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्या को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूट कर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है। दैट मीन्स वेद जो है वो हर व्यक्ति के लिए लिखे गए हैं, और हर व्यक्ति के लिए वेदों में कुछ ना कुछ विधान है, चाहे व्यक्ति कितना भी पतित स्तर पे हो, परंतु अगर वो वेद पूर्ण वस्तुओं को स्वीकार करता है तो धीरे धीरे उसकी भोग की इच्छा, इंद्रियों के भोग की जो पापमय इच्छा है वो इच्छा पूरी होती है और व्यक्ति उच्च पद की ओर जाता है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है, और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। परमेश्वर का सानिध्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यज्ञ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वो इस शरीर में सुखी जीवन की आशा कैसे कर सकता है? अगर इस जीवन में ही सुखी नहीं रहेगा तो आगे के जीवन में कैसे वो सुख की कामना कर सकता है? स्वर्ग में भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग सुख हैं, परंतु सबसे ऊंचा सुख है कि व्यक्ति इस भौतिक संसार से बाहर वैकुंठ में जाए और वहां पे कृष्ण का सेवा करे। और वो कृष्ण की सेवा करना और आध्यात्मिक संसार में जाना सभी समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन है। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि ये जो सारे जो यज्ञ उन्होंने डिस्क्राइब किए पिछले 6-7 श्लोकों में, वो सभी जो यज्ञ हैं वो प्रामाणिक यज्ञ हैं, और शास्त्रों में इनको बताया गया है कि इन यज्ञों को करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितुता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान बता रहे हैं 32वें श्लोक में, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। सारे यज्ञों के बारे में जो जानता है और यज्ञों को करता है वो मुक्ति की प्राप्ति करता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता के भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं। जो जैसा व्यक्ति है उसके लिए उसके लेवल का यज्ञ है, जैसे जो जिस क्लास में होता है उसके लिए एग्जामिनेशन या उसका कोर्स उसी तरह से होता है, उसी प्रकार से चूंकि यज्ञ वेदों में दिए हैं और वेद माँ के समान है, तो वेदों में कर्ता जो है, करने वाला जो है, उसकी स्थिति के आधार पर यज्ञों का समागम किया जाता है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसकी पुष्टि भगवान ने यहाँ पे अपने श्री मुख से की है। इन यज्ञों को जो जानता है वो करता है, धीरे धीरे वो मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। इन सभी यज्ञों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति का भक्ति दायक जो ज्ञान है वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान यहाँ पे सभी यज्ञों में सब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ को बोल रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक जो है इम्पोर्टेंट श्लोक है। नेक्स्ट श्लोक के बाद हम नेक्स्ट वीक करेंगे, क्योंकि उससे थीम बदल जाती है, नेक्स्ट सेक्शन चालू होता है। ये 33वां श्लोक आज का लास्ट श्लोक रहेगा। इसमें भगवान बता रहे हैं कि सभी यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। इसका मतलब है जितने प्रकार के भी यज्ञ हैं उन सभी यज्ञों में स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ जो बोला गया था वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि सभी कर्मों को करने के बाद व्यक्ति को ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। जब कोई व्यक्ति कर्म योग करता है तो उसको फिर ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सभी कर्म योग जो है वो ज्ञान योग में आके फलीभूत होते हैं, इसलिए ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है। और इसके अगले श्लोक में फिर सेक्शन चालू होता है कि ये ज्ञान यज्ञ कैसे किया जाए, तो इस ज्ञान यज्ञ करने के फायदे क्या हैं, ज्ञान यज्ञ करने से क्या क्या मिलता है, किससे इसको प्राप्त किया जाए, ये नेक्स्ट सेक्शन होगा। और वो सेक्शन इस अध्याय का लास्ट सेक्शन है जो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो ये श्लोक बहुत जरूरी है, इसका तात्पर्य भी बहुत अच्छा है। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है, और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। दैट मीन्स द्रव्य यज्ञ करते करते जब उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसका एलिवेशन हो जाता है, उसकी प्रगति हो जाती है। क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं, उनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावारामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी कभी ज्ञान कांड कहलाते हैं। तो इस श्लोक से पता चलता है कि द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, इन सभी में सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। और अगला जो श्लोक आता है 34वां श्लोक, वो श्लोक बताता है कि ये दिव्य ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए, कैसे लोगों से प्राप्त करना चाहिए। 34वां श्लोक बहुत फेमस श्लोक भी है, प्रभुपाद जी इसको कई बार कोट करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, श्लोक 34 से लेके इस अध्याय के लास्ट तक ऑलमोस्ट। किसी को कोई प्रश्न पूछना है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, कोई अगर प्रश्न है किसी को। ये टॉपिक एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक था, और इसके बाद शायद इतना टेक्निकल टॉपिक फिर से नहीं आएगा। ये कुछ कुछ कठिन टॉपिक है भगवद गीता के, इनको सम एक्सप्लेन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, एक प्रश्न है। यस शिवानंद।
इसमें जैसे जो योग के बारे में जैसे बताया गया, तो अभी जैसे जो पतंजलि योग विधि अगर कोई करते हैं, हालांकि मुश्किल है बहुत ज्यादा, बट जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत सालों तक खाते नहीं है, मतलब ऐसे भी कुछ लोग हैं योगी लोग, तो क्या वो इसी भक्ति को ही फॉलो करते हैं या फिर दैट इज ओनली द बॉडीली शारीरिक स्तर पर ही है हम माने।
लास्ट में मुझे क्लियर नहीं हुआ आपने क्या पूछा, जस्ट लास्ट में।
जैसे कुछ योगी होते हैं ना, तो आपने सुना होगा कि 27 साल हो गए कुछ खाया नहीं है, उनको रूम पे रखे साइंटिस्ट वो भी करते हैं कि क्या होती है, तो अभी उनके बारे में क्या मतलब कैसे उनको समझे, वो बॉडी शारीरिक स्तर पर ही है या आध्यात्मिक स्तर पर, मतलब वो भी कैसे समझेगा हम उसको?
शरीर के स्तर से तो ऊपर है उनको, एक्चुअली क्या है ज्ञान के स्तर पे बोला जा सकता है, जो कि अपने श्वास को रोकते हैं, श्वास को रोक के शरीर को नियंत्रित करते हैं। तो जो जो हमने डिस्कस किया था ना योग यज्ञ, सामान्यतः जो योगी इस प्रकार से होते हैं वो योग यज्ञ की स्थिति में होते हैं। योग यज्ञ मतलब अष्टांग योग की अवस्था में होते हैं, क्योंकि अष्टांग योग में प्राणायाम होता है और प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोक लिया जाता है, श्वास को रोक के वो निश्चल हो जाते हैं, कई कई सालों तक जीवित रहते हैं। जैसे हिमालय में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बाबा से मिले थे, घंस क्या नाम था उनका, कैलाश बाबा, 700 साल उनकी उम्र थी, 700 ईयर्स, और देखने में लगता था कि 50-60 साल के होंगे। तो वो इसी प्रकार के योगी थे, अष्टांग योग को उन्होंने सिद्ध करके रखा था, वो जब चाहते थे तभी सांस लेते थे। तो इस प्रकार से लोग अपनी उम्र बढ़ाते हैं, बहुत कम लोग हैं परंतु तब भी लोग हैं इस प्रकार से जो योग यज्ञ कर सकते हैं, अष्टांग योग को पालन कर सकते हैं।
तो प्रभु जी उसका फायदा क्या हुआ, अगर प्राण को रोक के रखा हमने तो फिर उससे तो हम तो यही मटेरियल वर्ल्ड पे ही रहेंगे ना, तो फिर ऐसे चीजों को शास्त्र में वर्णन है क्यों किया गया है कि प्राणवायु को रोक के रखना, क्योंकि रोक के रखेंगे तो ऑब्वियसली हम तो इसी मतलब मटेरियल वाले में ही रहेंगे ना, तो फिर ऐसी चीजें क्यों दी गई शास्त्र में?
नहीं, योग रोक के रखने का ये मतलब नहीं कि मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे, वो लोग अपनी सांस को रोक के इसलिए रखते हैं जिससे वो ज्यादा साधना कर सके। जैसे अभी किसी के पास मान लो 100 साल है, अगर वो सांस को रोकेगा तो हो सकता है 200 साल तक जिएगा, और वो अपनी साधना तो करते रहते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, दैट मीन्स वो टाइम को बढ़ा देते हैं जिससे उनको प्रैक्टिस का मौका मिले, ज्यादा मौका मिले। जैसे आपका एग्जामिनेशन अगर एक हफ्ते बाद होने वाला है और आपको कुछ मौका मिल जाए कि एक महीने का आपको वो पोस्टपोन होगा एग्जाम, या कुछ ऐसा हो जाए कि आपका एग्जाम एक महीने और पीछे चला जाए, तो आपको मौका मिल जाएगा तैयारी करने का। तो वो लोग सांस को रोक के ज्यादा समय प्राप्त करते हैं जिससे कि मृत्यु मृत्यु से जीत सके।
थैंक यू।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञान यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ दोनों में कुछ अंतर है या दोनों सेम है? यहाँ पे गीता में जो श्लोक में डेफिनेशन दी गई है ऑलमोस्ट दोनों को सेम बनाया गया है, क्योंकि स्वाध्याय मतलब वेदों का अध्ययन, और जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो ज्ञान प्राप्त होता है, तो दोनों को सेम बोला गया है। और दूसरा प्रश्न है, ध्रुव महाराज ने अष्टांग योग किया था और उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की थी, भगवान विष्णु का दर्शन मिला था, तो उन्होंने भक्ति योग नहीं किया था? एक्चुअली पहले के समय में अष्टांग योग कोई अलग से ऐसा योग नहीं है, अष्टांग योग करते समय भी लोग भक्ति करते थे। अष्टांग योग सामान्यतः अपने मन नहीं, सामान्यतः अपनी इंद्रियों को और अपनी ब्रीदिंग को, श्वास को रोकने के लिए सभी लोग करते थे। भागवत में तो डिस्क्रिप्शन आता है, पृथु महाराज ने भी किया था, ध्रुव ने भी किया था। तो वो ऐसी प्रोसेस है कि ऐसा नहीं कि भक्ति योगी उसको नहीं करते हैं, भक्ति योगी भी उसको करते हैं, परंतु ध्रुव महाराज सब करते थे, तो अष्टांग योग करते करते वो अपने श्वास को रोकते थे और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का, मंत्र के ऊपर ध्यान करते थे, मंत्र का जप करते थे और ध्यान करते थे। तो भक्ति योगी जब अष्टांग योग करते हैं तो भगवान भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, परंतु जो सामान्य लोग जो भक्ति नहीं रहते हैं, जब वो अष्टांग योग करते हैं तो वो समाधि में निराकार ब्रह्म का दर्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ध्रुव महाराज ने भक्ति नहीं किया, भक्ति योग में, भक्ति योग की स्थिति तक आने के लिए वो अष्टांग योग का सहारा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है मयंक, मयंक प्रभु आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु।
मैं,
हाँ प्रभु, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने इसमें लास्ट में परपट में लिखा हुआ था कि सारे जो लोग मतलब है उसमें से ज्ञान तब श्रेष्ठ है क्योंकि वो फिर मटेरियल ले जाते हैं, जैसे मतलब अब मैं ही हो गया और दूसरे हो गया क्या, लेकिन वो करते करते वो एलिवेट हो सकते हैं क्या, मतलब पोजीशन ऑफ नॉलेज क्या वो धीरे धीरे एलिवेट होंगे, एटलीस्ट अब मैं करते हुए जिसको ज्ञान नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है क्या प्रभु?
हाँ, सामान्यतः यज्ञ जो है वो धीरे धीरे एलिवेशन प्रोसेस में आते हैं, कोई भी कर्म यज्ञ जो है वो आगे जाके ज्ञान यज्ञ तक पहुंच सकते हैं, परंतु उनकी प्रोग्रेस डिपेंड करती है कि उनको गाइड किस प्रकार से मिलता है। अगर वो अपनी स्पीड से ही करते हैं तो उनको कई जन्म भी लग सकते हैं, अगर कोई उनको प्रामाणिक गाइड मिलता है, टीचर मिलता है या गुरु मिलता है, तो वो उनको गाइड करके फास्ट स्पीड में कर सकते हैं। नहीं तो सामान्यतः कर्म योग जो है वो ज्ञान योग में आगे आगे पहुंचता है कुछ कुछ लाइफ टाइम के बाद।
प्रभु, ये जैसे आपने पतंजलि सिस्टम का किया था, उसके बारे
हाँ
में प्रभुपाद जी 6 चैप्टर में, असल में एक पर्पट में लिखते हैं कि असल में जो उसका जो पर्पज होता है वो वही होता है, लाइक टू नो अब अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन विच
हाँ
इज नथिंग बट स्टेट टू दर्पण, लाइक वो लिखते हैं। तो उन लोगों का भी मतलब ऐसा रहता है कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि जैसे वो लोग का मटेरियल एक्टिविटीज को सीज कर लेते हैं जंगल में जाके सब करके, तो उसके बाद फिर वो रियलाइज कर लेते हैं 400 फॉर्म को, तो डिवोशनल प्रैक्टिस स्टार्ट होता है। तो क्या आम जो हम जैसे लोग हैं जिनको बहुत कठिन होता है मतलब साधना भक्ति में, क्या उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि तो वो मटेरियल डिजायर से फ्री होंगे या वो सब होगा, या उनकी भी स्थिति हमारी जैसी होती है?
नहीं एक्चुअली वो जो प्रोसेस है अष्टांग योग की प्रोसेस, वो प्रोसेस प्रैक्टिकली कलयुग में पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल सेंस में देखा जाए वो सभी के लिए कठिन है। साधना भक्ति अगर हमें कठिन लगती है तो साधना भक्ति उसकी तुलना में बहुत बहुत आसान है, क्योंकि
हाँ
तो अष्टांग योग के टीचर्स ही नहीं है अवेलेबल। और दूसरा, अगर बिना टीचर के हम केवल बुक से करते हैं तो अष्टांग योग में प्राण वायु जो है वो मेरुदंड के पास में आके फंस जाती है, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कई ऐसे योगी हुए हैं जिन्होंने उसको प्रयास किया और या तो पागल हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसको, क्योंकि चक्र जब आप जागृत करने का प्रयास करते हैं तो प्राण वायु शरीर के अंदर इतना ज्यादा, मेरुदंड का इतना ज्यादा जाल है, नर्व्स नर्वस सिस्टम इस प्रकार से है कि बिना प्रामाणिक गुरु के पास जाके आप उसको कर ही नहीं सकते। तो बहुत कठिन है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जैसा बताते हैं।
लेकिन तो मेरा प्रश्न मतलब वैसे एक अलग था, नॉर्मल जैसे ये श्रृंखला बताई गई है तो मतलब वो, हाँ कलयुग में तो ऑब्वियसली वो एक्सेसिबल ही नहीं है, लेकिन जो पुराने अगर जो होंगे इनके, इफ दे रियलाइज द 400 फॉर्म एंड देन दे स्टार्ट द स्पिरिचुअल एक्टिविटी विच इज नथिंग बट द डिवोशनल सर्विस, तो मतलब उनके लिए जैसे अभी हम लोगों को इतना फॉलोअप हो गया, मतलब क्योंकि हम लोग उस सब में फंसे हैं ना, हमको दिक्कत होता है, क्या उन लोगों के लिए क्या वो बहुत स्मूथ हो जाता है, क्या हम कह सकते हैं निष्ठा से वो कर सकते हैं, मतलब इतना माइंड ऑलरेडी हार्ट क्लियर हो सकता है कि उन लोग मतलब हमसे जंप लेवल पे वो कर सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है।
सामान्यतः जो लोग समाधि में भगवान के चार रूप प्रदर्शन करते हैं फिर भक्ति में आते हैं, परंतु समाधि तक पहुंचने की प्रोसेस उनकी बहुत लंबी होती है। हाँ ऑब्वियसली अब समाधि में जब वो भगवान का दर्शन करते हैं उसके बाद वो भक्ति में फिर निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पीछे का प्रोसेस कर लिया होता है। परंतु समाधि तक पहुंचना अपने आप में बहुत लंबा प्रोसेस है। कई कई ऋषियों को 50-50 हजार 1-1 लाख साल तपस्या में लग जाते हैं समाधि की स्थिति तक पहुंचने के लिए। तो वो योगा हमेशा कठिन है, इसलिए भक्ति योग को सबसे आसान बोला जाता है। केवल कलयुग में नहीं, बाकी सभी योगों में भी भक्ति योग को सबसे आसान बोला जाता है, सबसे आसान और सबसे ऊंचा, क्योंकि इसमें भगवान स्वयं मदद करते हैं। क्योंकि हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान स्वयं मदद करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, छोटे बच्चों को अगर अपने माता पिता के पास जाना है अमेरिका तो अपने आप नहीं जा सकता, वो केवल अपने फोन पे माता पिता से बात करते समय जोर जोर से रोने लगे तो माता पिता उस खुद ही आके उसका वीजा क्लियर करा के अपने साथ लेके जाएंगे। इसी तरह से कोई भी योग पद्धति के द्वारा इस संसार को पार करके भगवान के पास जाना उसी प्रकार से है कि छोटा बच्चा अपनी शक्ति से अमेरिका जाना चाहता है। परंतु भक्ति योग में क्या है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान खुद ही हमारा वीजा क्लियर करके साथ में लेके जाते हैं। तो भक्ति योग हमेशा आसान है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है।
हाँ प्रभु,
ओके एक और प्रश्न है।
धन्यवाद, थैंक यू प्रभु।
ओके एक प्रश्न और आया था, जस्ट मिनट। जो लोग स्टड वेदों को पढ़ रहे हैं वो ज्ञान योग करते हैं, हमारे बहुत स्वाध्याय भारत में बहुत है परंतु भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के स्वाध्याय योग का क्या प्रभाव होता है जब वो भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं, या शास्त्रों को केवल ज्ञान के लिए पढ़ना और भगवान को के दूसरे रूप को या निराकार को स्वीकार करना या अपने आप को भगवान समझना, इसका क्या फल होता है? अगर कोई ने वेदों को केवल ज्ञान के लिए पढ़ा है तो उसके दिमाग में रहेगा ज्ञान परंतु अप्लाई नहीं कर पाएगा। उसको हो सकता है उस ज्ञान के कारण वो स्वर्गलोक या कर्म कांड की प्राप्ति कर सके परंतु भगवत प्राप्ति नहीं होगी उसको, और अगर कोई अपने आप को भगवान समझता है तब उसको नरक की प्राप्ति होगी, और अगर कोई भगवान लॉर्ड कृष्ण या विष्णु को भगवान नहीं समझता है, उनको सामान्य व्यक्ति समझता है, तब भी उसको नरक की प्राप्ति होगी। परंतु अगर कोई मायावादी नहीं है, ये सब जो है ये दोनों प्रिंसिपल मायावाद है कि भगवान सामान्य है और सामान्य व्यक्ति भगवान है, ये मायावाद है, तो अगर ये कोई समझता है तो वो नरक जाएगा। परंतु अगर कोई भगवान को नहीं जानता है, निराकार ब्रह्म के बारे में ही पहुंच पाया है, तो भगवान उस पर कृपा करके अपने भक्त से उसकी मदद करते हैं, उसके कारण वो आगे भक्ति योग के ज्ञान को प्राप्त करता है और भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ओके ठीक है
प्रदीप, मेरा और एक क्वेश्चन था, लाइक भक्ति योग में कर्म कांड कितना मायने रखता है। हम देखते हैं कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, किसी से बात हो रही थी मेरी, तो वो जगन्नाथ जी के जो मतलब वो जग उड़ीसा का था, बट तो जगन्नाथ जी के जो रिचुअल्स होते हैं वो बहुत फॉलो करता है, ठीक है, तो ब्लेम कर रहे थे इस्कॉन में भगवान का श्रृंगार ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मतलब कभी भी रथ यात्रा निकाल देते हैं, क्योंकि भगवान ने शास्त्र में दिया है कि इस दिन को होना चाहिए, तो उस दिन को नहीं निकाल गए, जब मन करे तब निकाल लेते हैं, तो वो ऐसे ब्लेम कर रहा था। तो हमारे में डिस्कशन हो रही थी, तो उसके ऐसे में समझाने की कोशिश कर रहा था, तो बोल रहे थे कि आप लोग अगर करो तो कर्मकांड नहीं, अगर हम बोलते हैं तो कर्मकांड बोलते हो, तो इस चीज को कैसे समझेंगे हम, मतलब मैं कोशिश हो गया बट हो नहीं पाया।
नहीं, जगन्नाथ जी के लिए जो भी क्रियाएं होती है वो कर्मकांड नहीं कहलाता, वो तो भक्ति की क्रियाएं है ना। कर्मकांड भगवान कृष्ण के लिए नहीं होता, कर्मकांड तो सामान्य देवताओं के लिए होता है।
बट लाइक ब्रो जी, जैसे देखिए अभी किसी को पता नहीं है चीजें फॉलो करना कि एग्जैक्टली टेम्पल में इस तरीके से रिचुअल्स होती है, ठीक है, एंड वो अपने मतलब वो जितना हो पाता तो कोशिश कर रहे हैं कि भगवान का श्रृंगार करे, तो लाइक जगन्नाथ टेम्पल में भगवान को सूती के कपड़े पहने आता है, तो बोले कि तुम लोग पगड़ी पहनाते हो भगवान को, कहाँ पे लिखा है शास्त्र में पगड़ी पहनना, जैसे शास्त्र में श्रृंगार है वैसा क्यों नहीं करते हो तुम लोग, तो ऐसे ब्लेम करा था। तो
इसके बोल सकते हैं कि आपको कैसे पता शास्त्र में नहीं लिखा है, आप जाके हरिभक्ति विलास में पढ़िए कि जगन्नाथ जी का श्रृंगार कैसे होता है और हर विग्रह का श्रृंगार कैसे होता है। भगवान को पगड़ी लगाना तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी लिखा हुआ है, उज्ज्वल नीलमणि में भी लिखा हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति ने सारे शास्त्रों को नहीं पढ़ा है तो वो कैसे क्लेम कर सकता है कि आप लोग शास्त्र के आधार पर नहीं करते हैं। उनको बोलिए आप जाके इस्कॉन मंदिर के पुजारी से पूछिए, बता देगा कौन से शास्त्र में लिखा है, या उसको मेरा नंबर दीजिएगा, बता देंगे कहाँ कहाँ पे लिखा है, कैसे भगवान का श्रृंगार करना है। हमेशा शास्त्रों के आधार पे ही होता है। आप अगर हमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, हमने उसके प्रैक्टिस को नहीं देखा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो सब लोग अपने मन से कर रहे हैं।
और लाइक ब्रो वो ऐसा कह रहा था कि जैसे जगन्नाथ जी की जो स्कंद पुराण के अनुसार या पद्म पुराण के अनुसार जो रथ यात्रा का दिन फिक्स होती है, उस दिन को तुम लोग ना निकाल कर तुम्हारी जब मन करे तुम निकाल लेते हो, कार में बिठा के निकाल लेते हो, ऐसा खिलौना समझ के रखते हो।
उसके पीछे क्या उद्देश्य है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकलती है?
ऑब्वियसली भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान निकलते हैं।
तो प्रभुपाद जी या भक्ति सिद्धांत या जो भी आचार्य हैं उनका क्या मोड था? जैसे प्रभुपाद जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद जी तो अमेरिका में फ्लैट में मंदिर खोल देते थे, उस समय बिल्डिंग विल्डिंग मंदिर तो बनाते नहीं थे, फ्लैट रेंट पे लिया मंदिर खोल दिया। तो एक व्यक्ति आके पूछता है कि आपके मंदिर का गुंबद कहाँ है, आपने गुंबद नहीं बनाया ऐसा ही मंदिर खोल दिया। प्रभुपाद ने उससे पूछा मंदिर खोलने का मतलब क्या है, मंदिर खोलने का मतलब गुंबद बनाना है कि प्रचार करना है? उसने बोला प्रचार करना। तो उन्होंने बोला तो फिर अभी पाश्चात्य देशों में कोई सिद्धांत ही नहीं है कि मंदिर कैसे होता है क्या होता है, भगवान को ही नहीं जानते हैं, और यहाँ पे आप बोले हुए कि पहले गुंबद बनाओ उसके बाद प्रचार करो। प्रचार सबसे जरूरी है कलयुग में, प्रचार सबसे जरूरी है। प्रचार के लिए हम चीजों को कम कुछ को जो डिटेल्स है उसको हम फॉलो नहीं करते। उसका ये मतलब नहीं कि हम ये बोलते हैं कि नहीं उस दिन कर ही नहीं सकते हैं, परंतु अलग अलग दिन करेंगे तो पाश्चात्य देशों में अलग अलग दिन करने से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा जा सकता है, इसलिए बहुत सारी रथ यात्रा पूरे साल भर होती है। परंतु वो सबके अपने अपने मतभेद हैं, ये तो हमारे आचार्यों के नियम है, उसके कारण हम करते हैं। जगन्नाथ जी के जो भक्त हैं उनको उनके लिए ये मानना बहुत कठिन है। उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, उनका सेंटिमेंट भगवान के लिए अच्छा है, परंतु प्रभुपाद ने जो स्थापित किया वो प्रचार के लिए स्थापित किया।
तो ऐसे उनका ये जो मानना क्या वो गलत है या सही है या फिर किस तरीके से?
दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, उसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि सीता जी बोल रही थी सीता जी लक्ष्मण से बोलती हैं कि जाओ, राम राम की जान खतरे में है, जाके राम को बचाओ। और लक्ष्मण जी सीता जी से बोल रहे हैं कि भगवान राम को तो कोई नहीं मार सकता है, उनकी जान कैसे खतरे में होगी, उन्होंने मुझे आपकी रक्षा करने के लिए बोला। तो सीता जी भगवान राम के प्रति चिंतित थी प्रेम के कारण, और लक्ष्मण जी उसी प्रेम के कारण भगवान राम के प्रति कॉन्फिडेंट थे। तो दोनों में से कोई गलत नहीं था, सीता भी राम की भक्त है, लक्ष्मण भी राम के भक्त है, परंतु एक भगवान राम की रक्षा के लिए चिंतित थे और दूसरे भगवान राम के ऊपर कॉन्फिडेंट थे। तो ये तो चीजें चलती रहेंगी संप्रदाय में, उसमें किसी का ऐसा मिस्टेक नहीं है, परंतु भगवान की सेवा करने का अलग अलग भाव है, अलग अलग तरीके से सेवा करना चाहते हैं।
ओके
ठीक है, नेक्स्ट वीक हम 34वें श्लोक से करेंगे। आज शाम को 7:30 बजे भागवत का क्लास होगा, परीक्षित महाराज यमुना के तट तक पहुंच चुके हैं और श्रीमद भागवत प्रारंभ होगा आज, मतलब सुखदेव गोस्वामी सुनाना चालू करेंगे। शाम को 7:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवत
जय
की जय।
जय।